ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबका गोवर्धन पूजा के महोत्सव में श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। इस कार्तिक महीने में अनेक उत्सव हैं, एक के बाद एक दिन प्रतिदिन बहुत ही मधुर से मधुर उत्सव है। दीपावली मनाई कल ही, साथ साथ भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने उखल से बांधा तो दामोदर लीला भी कल ही हुई थी वृंदावन में। और आज सुबह हमने श्रीमान सनत कुमार प्रभु से दामोदर लीला के बारे में भी सुना। और आज गोवर्धन पूजा का त्यौहार है, उत्सव है। बच्चा बच्चा भारत में जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था, एकेन हस्तेन, एक हाथ में। ये बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय लीला है भगवान श्री कृष्ण की, और इसमें कोई वाद विवाद नहीं हो सकता है। क्योंकि रासलीला के बारे में भले कोई गलत फहमियाँ हों, परंतु गोवर्धन लीला के बारे में कौन सी गलत फहमी हो सकती है? यदि गलत फहमी है तो केवल ये कि लोग विश्वास नहीं करते कि एक छोटा बच्चा एक बड़े पर्वत को उठा सकता है। परंतु ध्यान रखने की बात ये है कि श्री कृष्ण कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, वो स्वयं भगवान हैं जो कि एक मनुष्य की लीला कर रहे हैं। जब भगवान मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मनुष्य बन गए। मनुष्यों की तरह दिखते अवश्य हैं, क्योंकि वो उनका मूल रूप है, परंतु भगवान श्री कृष्ण सदैव भगवान ही रहते हैं। और मनुष्यों की तरह लीला करते करते ऐसे प्रतीत होता है कि वो भी हम सब की तरह ही हैं। तो इस गलत धारणा का खंडन करने के लिए कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य अपने शक्ति का इस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं, प्राकट्य करते हैं कि सबको पता चले कि वास्तव में वो स्वयं भगवान हैं। तो गोवर्धन लीला एक ऐसी लीला है। गोवर्धन धारण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कितने सारे नाम हो गए, गिरिवर धारी, गिरि मतलब पर्वत, वर मतलब श्रेष्ठ। तो पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ जो गोवर्धन है उसको धारण करने वाले गिरिवर धारी, या गिरि गोवर्धन धारी, या गोवर्धन धारी, गिरिधारी, ऐसे बहुत सारे नाम भगवान श्री कृष्ण के हैं। गिरिधारी या गोवर्धन बहुत विशेष अनेक कारणों से है। एक तो ये है कि उन्होंने उनके कारण भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा मधुर उत्सव प्रकट कराया। दूसरा कारण ये है कि गिरि गोवर्धन दोनों भगवान के रूप भी हैं और भगवान के दास भी हैं। और ये जो एक गुह्य बात है, ये भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को ही पता है। आज भी इतने लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु भक्त गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। लगभग 23 किलोमीटर पैदल चलते हैं, गर्मी में, ठंडी में, बारिश में, और चलते चलते कष्ट बहुत होता है, पत्थर चुभते हैं, कांटे चुभते हैं। यद्यपि पहले की तरह नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा कांटे हुआ करते थे सड़क पे, आजकल इतने कांटे नहीं हैं, फिर भी लोग चलते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्हें सब ये गोवर्धन धारण करने की लीला बहुत प्रिय है, गोवर्धन को बहुत सम्मान देते हैं। जो श्रद्धालु भक्त वृंदावन में या गोवर्धन में जाते हैं, बाहर से आते हैं, वो कभी गोवर्धन के ऊपर पैर नहीं रखते, थोड़े दूर से ही रह के परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गोवर्धन स्वयं श्री कृष्ण हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को या किसी उनके अन्य प्राकट्य रूप को, प्रकट रूप को हम पैर नहीं लगाते, बड़े सम्मान से स्पर्श करते हैं, ठीक उसी तरह से श्रद्धालु भक्त गोवर्धन पर्वत को दूर से ही प्रणाम करते हैं। और क्योंकि गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए वहाँ जो छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं जिनको शिला कहते हैं, गोवर्धन शिला, उनका उनकी उपासना, उनकी आराधना भक्त लोग करते हैं। हालांकि गोवर्धन से ऐसे शिला उठा के नहीं लाना चाहिए। ये हम सबको याद रखना चाहिए। कई बार भक्त ऐसी गलती करते हैं, सोचते हैं कि हम भी गिरिराज शिला की उपासना घर में कर लेंगे और बस उठा के ले आते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए कभी। ऐसे बताया जाता है कि जब ब्रजवासी कोई देते हैं तब ले सकते हैं, फिर भी जब तक कि गुरु आदेश नहीं मिले हमें गिरिराज शिला घर में लाकर उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। परंतु सत्य तो ये है कि गिरिराज भगवान कृष्ण ही हैं। और एक विशेष बात यह है कि भगवान का रूप होते हुए भी उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा की, इसलिए गिरिराज को या गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण का दास भी माना जाता है। और किस तरह के दास हैं भगवान कृष्ण के? सबसे श्रेष्ठ दास, हरिदास वर्य। वर्य मतलब सबसे श्रेष्ठ दास, दास मतलब सेवक। तो वृंदावन के गोपियां जब आपस में परस्पर चर्चा कर रही होती हैं तो वृंदावन का गुणगान करती हैं और कहती है, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। वो कहती है कि ये पर्वत जो है बहुत ही भाग्यशाली है। हंता अयम, ये पर्वत हरिदास वर्य है, हरिदासों में से सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि हर दृष्टि से ये भगवान की सेवा करता है। हंताय मद्रिर, ये अद्रि ये पर्वत हरिदास वर्य है। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा और बलराम जी की सेवा करते हैं और जब श्री कृष्ण और बलराम उन पे चलते हैं तो फिर उनके चरण कमलों के स्पर्श के कारण वो प्रफुल्लित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। इसलिए गोवर्धन जो है सदैव प्रसन्न रहते हैं। मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर यत् पानीय सूय वसकंदर कंद मूलैः। और वो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बलराम को सम्मान देते हैं और उनके जो गाय हैं उनके लिए भी पानीय सूय वसकंदर कंद मूलैः, तो ग्वाल बालों के लिए खाने के लिए सुंदर कंद मूल फल आदि प्रदान करते हैं। वो गायों के लिए बहुत ही रसमय और स्वादिष्ट जो घास है वो प्रदान करते हैं चरने के लिए। वहाँ पे शीतल जल मिलता है झरनों में, तालाबों में, बहुत अच्छे गुफे होते हैं जहाँ भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ अपने पार्षदों के साथ लीला कर सकते हैं। इस प्रकार से गोवर्धन लीला करते सेवा करते हैं भगवान कृष्ण की। तो भगवान भी हैं और भगवान के दास भी हैं गोवर्धन। तो गोवर्धन के बारे में बताया जाता है कि गोवर्धन के पिताजी द्रोणाचल के पास एक बार एक ऋषि आए जिनका नाम था पुलस्त्य। तो पुलस्त्य ने जब इस पर्वत को देखा गोवर्धन को, तो मन ही मन में सोचा, अरे जहां मैं रहता हूं वाराणसी में वहां पे कोई पर्वत नहीं है, तो यदि ये गिरिराज ये गोवर्धन ये पर्वत ये जी मेरे साथ चले आते तो मैं इसे वाराणसी ले जाता और वाराणसी में इस पर्वत के ऊपर बैठ के मैं तपस्या करता। आपको पता है वाराणसी तो गंगा के तट पे है, वहां पे तो कोई पर्वत नहीं है। तो द्रोणाचल ने जब बात सुनी तो बड़ा संकोच हुआ उनको कि अरे मेरे पुत्र को मैं कैसे दे दूं। परंतु गोवर्धन बहुत ही बुद्धिमान थे, उन्होंने समझ लिया कि यदि मेरे पिता मना करेंगे तो हो सकता है कि ये ऋषि कोई शाप भी दे सकते हैं। तो उन्होंने स्वयं कहा कि मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं हे मुनिवर, परंतु एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि यदि आपने मुझे कहीं एक जगह जमीन के ऊपर रख दी रख दिया तो मैं उस स्थान से फिर हिलूंगा नहीं। तो पुलस्त्य ऋषि तैयार हुए और उन्होंने एक विशाल रूप धारण कर लिया, गोवर्धन को उठाया और आकाश पथ से चलते चलते आए, और अचानक दैव से भगवान की योजना से ऐसे हुआ कि प्रकृति के पुकार बहुत तीव्रता से आई और उन्होंने सोचा कि अब मुझे जाना ही होगा। तो गोवर्धन को हाथ में धारण किए हुए कैसे जा सकते थे, तो वहाँ पर नीचे ज़मीन पर रख दिया। अब उनको याद नहीं रहा कि गोवर्धन ने क्या शर्त रखा था, भूल गए। जब हमें भी जाना होता है ना, बाकी सब भूल जाते हैं हम लोग, है कि नहीं? जाना है तो जाना है, और किस किसने क्या कहा नहीं कहा वो सब याद नहीं रहता। तो उन्होंने रख दिया और जब लौट के आए स्नान करके, तो उठाने का प्रयास जब किया उन्होंने, तो देखा कि गोवर्धन उठ नहीं रहे हैं। और फिर गोवर्धन ने उनको कहा कि देखिए, आपने ये शर्त कबूल की थी, आपने मुझे यहाँ नीचे रख दिया, इसलिए मैं यहाँ से अब हिलूंगा नहीं। तो पुलस्त्य ऋषि को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने सोचा कि मेरे खिलाफ ये छल हुआ है। तो उन्होंने शाप दे दिया गोवर्धन को कि आज से प्रतिदिन तुम ऊंचाई में चौड़ाई में एक सरसों के बीज के मात्रा में कम होते जाओगे, इसलिए इतने साल हो गए उसके बाद भी गोवर्धन कम होते जा रहा है धीरे 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 धीरे। और ऐसे बताया जाता है कि कलयुग के अंत तक गोवर्धन प्राय अदृश्य हो जाएगा या भूमि के अंदर जाएगा। तो जिस स्थान में पुलस्त्य ऋषि ने इस गोवर्धन पर्वत को रखा था वो ब्रजभूमि है। उस समय ये पुलस्त्य ऋषि को तो नहीं पता था, ये तो भगवान कृष्ण की योजना से ही हुई, इसलिए गोवर्धन वहां पर व्रज भूमि में प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत के चार स्कंधों में, दशम स्कंध के चार अध्यायों में गोवर्धन लीला का वर्णन श्रीला शुकदेव गोस्वामी करते हैं, और इस लीला का संक्षेप में वर्णन मैं करूंगा। अध्याय क्रमांक 24, 25 और 26 और 27। तो ऐसे बताया जाता है कि एक बार नंद महाराज, जो श्री कृष्ण के पिता थे, अन्य गोपों के साथ में एक बहुत ही बड़ा इंद्र यज्ञ, इंद्र पूजा करने जा रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए, उस समय केवल एक 7 वर्षीय बालक थे वो। तो वहां पर आए और पूछा कि पिताजी, आप ये क्या कर रहे हो, किनकी पूजा कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, मुझे भी आप बताइए। तो नंद महाराज ने बताया कि देखो, इंद्रदेव ये वर्षा के देव हैं, और वर्षा जब आती है पृथ्वी के ऊपर तो उस समय सारे अनाज भी अनाज उगता है, यहाँ पर फल फूल आदि सब खेत में आ जाते हैं, तो खेत हरे भरे हो जाते हैं वर्षा के कारण, और इसलिए हमें इंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे भरण पोषण के लिए हम वर्षा के ऊपर निर्भर हैं और वर्षा इंद्रदेव की देन है। तो जब ऐसे भगवान कृष्ण ने सुना तो उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सोचा कि ये ठीक बात नहीं है। तो जानबूझकर उन्होंने गलत बातें बताना शुरू कर दिया। उन्होंने एक वाद बताया जिसको कर्म मीमांस कहते हैं या कर्मवाद कहते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है। आपने ये सुनी होगी बात, समाज में लोग ये बहुत कहते हैं, तस्मात् संपूजयेत् कर्म, कि कर्म की पूजा करनी चाहिए, हमें भगवान की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, बस हम कर्म करते हैं, कर्म के द्वारा फल मिलते हैं, और बुरे कर्म किए तो बुरे फल, अच्छे कर्म किए तो अच्छे फल, इसलिए कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सर्वस्व है, इसलिए कर्म की पूजा करनी चाहिए, इसमें इंद्रदेव का क्या लेना देना है। वास्तव में इस वाद में दोष ये है कि कर्म सिद्धांत आखिर बनाया किसने? जब हम कर्म करते हैं तो कर्मों के फल देते कौन हैं? और ये कौन निश्चय करते हैं कि किस प्रकार के कर्म के लिए कौन सा फल मिलना चाहिए? तो जो भी नियम होता है, कोई कानून होता है, उसके पीछे भी एक कानून बनाने वाला होना चाहिए, तो वो भगवान है। तो खैर, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ऐसे एक नास्तिकवाद प्रस्तुत किया जानबूझकर, और फिर उन्होंने कहा और एक गलत सिद्धांत प्रस्तुत किया अपने पिताजी के सामने, और यह है नास्तिक सांख्यवाद। और एक नास्तिक वाद क्या है कि भगवान नहीं है, यहां केवल प्रकृति है, प्रकृति ही भगवान है और प्रकृति से ही सब कुछ चलता है। प्रकृति को बनाने वाला कौन है ये सब क्यों सोचना चाहिए, ऐसे लोग बोलते हैं। तो वास्तव में प्रकृति अपने आप नहीं हो सकती, प्रकृति तो चेतन नहीं है, तो अचेतन वस्तु से चेतन कोई चेतना कैसे उत्पन्न हो सकती है? तो यहां तीन गुणों से सब कुछ बनाया हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा अपने पिता से, सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण, जब बादल रजगुण से प्रेरित होते हैं तो फिर बादल वर्षा बरसाते हैं, तो इसमें इंद्रदेव की क्या भूमिका है? इसलिए प्रकृति ही प्रधान है। तीसरी बात, तीसरा तर्क जो भगवान श्री कृष्ण ने रखा इंद्रदेव अपने पिता नंद महाराज के पीछे, वो ये है कि हम लोग ग्वाले हैं, गोपाल हैं, हम गायों का देखरेख करना ये हमारा कर्तव्य होता है, और गाय चरते हैं, गोचर भूमि में जाते हैं, वन में जाते हैं, तो हम वनों के ऊपर निर्भर हैं और गोवर्धन पर्वत हमें सब कुछ प्रदान कर रहा है। यहाँ बहुत ही रसमय घास है, यहाँ पे कितने फल फूल कंद मूल बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर, तो हम वास्तव में गोवर्धन के ऊपर निर्भर हैं, यहाँ गोवर्धन के वनों के ऊपर निर्भर हैं, तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने तर्क रखे। तो आपको हे पिता, और हमारे जितने भी बड़े ब्रजवासी हैं, उन सबको उचित है कि आप गोवर्धन की पूजा करें। तो इसके लिए क्या करना होगा? जितने भी गाय हैं हमारे, वो हमारे लिए पूजनीय हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं वो भी हमारे लिए पूजनीय हैं, और गोवर्धन पर्वत, इन तीनों की पूजा बड़े धूमधाम से करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाने चाहिए, बहुत बड़ी मात्रा में, और फिर सारे ब्राह्मणों को यज्ञ आदि, मंत्र जप आदि के द्वारा करवाना चाहिए, और फिर सबको प्रसाद देना चाहिए, और सब जब प्रसाद ग्रहण कर लेंगे उसके बाद हमें गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए इकट्ठे मिलकर। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज को बताया। अब भगवान श्री कृष्ण की वाणी इतनी मधुर थी कि कोई भी उनकी बात सुनता तो मना नहीं कर सकता। तो इतने सुंदर ढंग से, इतने मधुर ढंग से श्री कृष्ण ने समझाया कि नंद महाराज और अन्य जो गोप हैं उन्होंने तुरंत बात को मान ली। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है इस समय कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे तरह तरह के तर्क, वो भी गलत तर्क, क्यों सामने रखे? वैसे येन केन प्रकारेण, भगवान कृष्ण को नंद महाराज और अन्य ब्रजवासियों को इंद्र पूजा करने से रुकवाना था, इसलिए उन्होंने तरह तरह के गलत वाद भी प्रस्तुत कर दिए। श्रील श्रीधर स्वामी, जो कि श्रीमद् भागवत के बहुत बड़े टीकाकार हैं, वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब इंद्रदेव की पूजा रोककर गोवर्धन की पूजा करवाने का निवेदन किया, तो इसके पीछे कारण क्या थे? सबसे पहली बात श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान ने जान लिया कि उनके भक्त देवराज इंद्र के हृदय में अभी अभिमान या घमंड आ चुका है, और वैसे किसी भी व्यक्ति में घमंड आना अच्छा नहीं है, और विशेष रूप से जब कृष्ण के भक्त के हृदय में घमंड आ जाता है तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। कृष्ण भक्त सदैव नम्र होते हैं, अपने आप को अन्यों के दास समझते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को ऊंचा पद मिल जाता है, बहुत वो ऐश्वर्यशाली हो जाता है, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि उसके हृदय में घमंड आ जाता है, और ऐसे ही हुआ इंद्रदेव के साथ। इंद्रदेव भी भगवान नहीं हैं, वो भगवान के दास हैं। जब भगवान के दास भूल जाते हैं कि वो दास हैं और अपने आप को भगवान मानने लगते हैं, तब समस्या हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण इंद्रदेव के इस मान को भंग करना चाहते थे, और ये मान बहुत बड़ा हो गया था, एक पहाड़ के समान हो गया था, और इसलिए एकमात्र कृष्ण ही थे जो इस पहाड़ रूपी मान का भंग कर सकते थे, या महान रूपी पहाड़ का भंग कर सकते थे। तो ये पहला कारण था। दूसरा कारण था कि भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रजवासियों के लिए एक बहुत ही विस्मयजनक आनंदमय उत्सव स्थापित करना चाहते थे, जिससे न केवल ब्रजवासियों को आनंद मिले, परंतु आने वाले लाखों लाखों पीढ़ियों के लिए भी, हजारों वर्षों तक ये एक श्रवण कीर्तन और ध्यान के लिए एक विषय बन जाए। इसलिए हम देखते हैं इस लीला के लगभग 5000 वर्ष बाद भी आज हम लोग यहाँ पे गोवर्धन लीला का वर्णन कर रहे हैं, गोवर्धन पूजा का उत्सव मना रहे हैं, और इसमें इतना आनंद हम ले रहे हैं। तो भक्तों के आनंद के लिए भगवान श्री कृष्ण एक उत्सव बनाना चाहते थे। और तीसरी बात, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को धारण करके एक अपने आंतरिक उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते थे, और वो क्या था? वो ये था कि वो लगातार 24 घंटे सारे ब्रजवासियों के साथ में रहना चाहते थे। 24x7 ऐसे कहते हैं, सदैव। साधारणतः क्या होता था, प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण उठते थे और अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ में गायों को चराने के लिए वन में जाते थे, और सायंकाल लौट के आते थे वापस। तो दिन भर और रात भर भी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते थे, केवल सुबह को प्रातः काल में थोड़े समय के लिए और सायंकाल में थोड़े समय के लिए वो भगवान कृष्ण का दर्शन कर सकते थे। परंतु भगवान चाहते थे कि मैं भी मेरे सारे ब्रजवासी भक्तों को देखना चाहता हूं निरंतर, और वो भी मुझे देखना चाहते हैं। और जब गोवर्धन पर्वत को धारण किया उन्होंने, तो 7 दिन 7 रात लगातार ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण का दर्शन किया, और श्री कृष्ण ने भी ब्रजवासियों का दर्शन किया। श्रील जीव गोस्वामी और एक कारण बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला क्यों की। वो बताते हैं कि श्री कृष्ण सारे दुनिया को एक संदेश देना चाहते थे कि देखो मेरे शरण में ही आओ, और किसी के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। अनेक देवता हैं, 33 करोड़ देवता हैं, सबकी इनकी उनकी उपासना करते नहीं रहना, केवल मेरे शरण में आके मेरी ही सेवा करो, मेरी ही भक्ति करो, और डरना नहीं, यदि तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे और मेरे शरण ले जाओगे तो और तुम्हें डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से श्री कृष्ण के के मन में विचार थे, ऐसे हमारे महान वैष्णव आचार्यों ने बताया है। तो खैर, अब जो मासूम और शुद्ध हृदय वाले व्रजवासी थे, उन्होंने ठीक वैसे ही किया जैसे कि श्री कृष्ण ने निवेदन किया था। बड़े धूमधाम से उन्होंने एक उत्सव मनाया। बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे रसोई हो गई। सारे गांव से, विभिन्न गांव से लोग आए। बहुत पहाड़ की तरह वहाँ पूरी बने, पहाड़ चावल के पहाड़ थे, सब्जियों के पहाड़, और दूध आदि के बहुत सारे, मिठाई आदि सब बने। तो इतने सारे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन इतनी बड़ी से बड़ी मात्रा में बने और गोवर्धन के सामने रखे गए। और फिर एक बहुत अद्भुत घटना हुई। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एक विशाल गोवर्धन का रूप धारण कर लिया, और गोवर्धन ने आगे आके वो सारा जो भोग है, जो नैवेद्य है, उसको स्वीकार कर लिया। एक क्षण में सब कुछ स्वीकार कर लिया। वैसे जब हमारे सामने कोई थैली रखी हुई होती है तो उसे खाने के लिए थोड़ा समय लगता है, 10 मिनट 15 मिनट 20 25 मिनट। परंतु गोवर्धन के सामने इतना बड़ा भोग लगाया हुआ था, इतने सारे व्यंजन थे, फिर भी एक क्षण में गोवर्धन ने इनको स्वीकार कर लिया बड़े आनंद से। और इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की। उन्होंने ये बतलाना चाहा ब्रजवासियों को कि वास्तव में मैं गोवर्धन से अभिन्न हूं और मैं स्वयं यहां प्रकट हो रहा हूं। देखो, इंद्रदेव को जब तुम अर्पण करते हो कुछ भोग आदि, या कुछ नए कुछ अर्पण करते हो, तो वो इंद्रदेव स्वयं आके यहां नहीं लेते हैं, परंतु आपने मुझे अर्पण किया, मैं स्वयं प्रकट होके इस भोग को ले रहा हूं, और इतना विशाल रूप मैंने धारण किया है, और मैं ही गोवर्धन हूं, ऐसे कृष्ण बताना चाह रहे थे। और ये भी है कि अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से समर्थ हूं, सक्षम हूं। और फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को प्रणाम किया, सारे ब्रजवासियों ने भी प्रणाम किया। इसके पहले सारे ब्रजवासी जो हैं गोवर्धन की परिक्रमा करके आए। सारे गोपगण जो थे गौओं के साथ चलते चलते गए, गायों ने भी परिक्रमा कर ली, और अन्य जितने भी पशु थे नंदगांव में या वृंदावन गोकुल में, उस वृंदावन में, तो सारे पशु भी उनके साथ में चले और उन्होंने परिक्रमा कर ली। और जो गोपियां थीं छोटे बच्चों के साथ बैलगाड़ी के ऊपर बैठे, और वो भी अपने मीठे मीठे स्वरों में गीत गा रहे थे, कृष्ण का गुणगान कर रही थीं। इस प्रकार से ऐसे आनंद भरा एक उत्सव मनाया गया। तो खैर, ये तो हो गया। अब सारे ब्रजवासी जो थे बहुत प्रसन्न हुए, इतना अच्छा उत्सव मनाया गया, इतने लोग प्रसन्न हो गए सारे ब्रज भूमि में। परंतु बहुत दूर स्वर्ग लोक में एक व्यक्ति प्रसन्न नहीं हुए, और वो कौन थे? वो इंद्रदेव थे, देवराज इंद्र। देवराज इंद्र को आया बड़ा क्रोध। उन्होंने वो सोचने लगे कि ये क्या हो गया, और उनके अंदर जो घमंड था वो बाहर और उभर आया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आह ईशमानी, आह मतलब वो कहने लगे, क्या कहने, किस तरह से कहने लगे, ईशमानी, अपने आप को ईश या भगवान मानकर वो कहने लगे। देखिए, आजकल रोग या बीमारियां बहुत सी हैं। आजकल कोरोना की बीमारी है और बहुत सारी बीमारियां अन्य हैं, डेंगू है, टाइफाइड है, मलेरिया है, बहुत सारी बीमारियां हैं। परंतु एक बहुत ज़्यादा खतरनाक रोग जो है, जो जिसके बारे में डॉक्टर आपको नहीं बताएंगे, परंतु केवल मंदिर में आपको सुनाई पड़ेगा इस रोग के बारे में। वो रोग क्या है? ईश मानी। ईश मतलब भगवान, मानी मतलब जो मानता है, अपने आप को बहुत विशेष मानना, भगवान मानना, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, घमंड। ये घमंड जो होता है, एक मिथ्या अभिमान की भावना होती है, ये सबसे बड़ा रोग है इस दुनिया में। ये हमें तरह तरह के गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है, भ्रम में डालता है, और हमें लगता है कि ये सब मेरा है और मैं ही सब कुछ हूँ, और ऐसे गलत धारणा के आधार पर अपने जीवन को हम बिताते हैं। तो यदि इस एक रोग को ठीक किया जाए तो अन्य जितने भी रोग हैं उनको भी ठीक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस एक रोग को ठीक करने से हमें भौतिक शरीर धारण करना ही नहीं पड़ेगा। हम भगवान के धाम में चले जाएंगे, गोलोक वृंदावन में, गोवर्धन में श्री कृष्ण के साथ में रहेंगे, तो वहां आध्यात्मिक देह प्राप्त होगा, और फिर आध्यात्मिक देह के लिए तो कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई जन्म मृत्यु नहीं। तो इंद्रदेव की भावना ऐसी थी, ईशमानी। और फिर इंद्रदेव कहने लगे, अहो श्रीमद महात्म्यन गोपानाम कान नौकसम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य ये चक्रु देव हेलनम। वो कहने लगे, अहो, अरे देखो तो, श्रीमद, श्री मतलब ऐश्वर्य, मद मतलब उन्मत्त हो जाना, महात्म्यम, ये ब्रजवासियों को इतना ज्यादा ऐश्वर्य हो चुका है कि इनका मन बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो चुकी है, इतना घमंड इनके, महान घमंड इनके मन में आ गया है। किनके मन में? गोपानाम, ये सारे गोपगण जो हैं, कानन ओकसाम, कानन अर्थात वन, ओकसाम मतलब रहने वाले, तो ये वन में रहने वाले गोपों के मन में बहुत घमंड आ गया है अपने ऐश्वर्य के बारे में। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, एक साधारण इस बहुत इस पृथ्वी लोक का जो बच्चा है कृष्ण, उसका आश्रय लिया है इन्होंने। ये चक्रुर देव हेलनम, इसलिए उन्होंने हम देवों की अवहेलना की है, हमारा अपमान किया है। और फिर इंद्रदेव भक्त होते हुए भी कृष्ण की निंदा करने लगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब हम भक्त हो जाते हैं तो हर बार हम भगवान के का गुणगान ही करेंगे। कभी कभी घमंड के कारण बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि हम भगवान श्री कृष्ण को भी भला बुरा कह देते हैं। इसका मतलब है कि हमारी भक्ति अभी तक परिपक्व नहीं हुई है। जब किसी भक्त के जीवन में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई अपघात हो जाता है, तो हो सकता है कि वो डावाडोल हो जाए। उसकी श्रद्धा यदि कोमल हो तो फिर वो सोचने लगता है कि भगवान कृष्ण ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण है ही नहीं। इस प्रकार से गलत धारणाएं मन में आने लगती हैं। तो इंद्रदेव, ये भी महान भक्त हैं भगवान के, फिर भी देखिए क्या बोलने लगे। वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। कृष्ण को गालियां देने लगे, कहने लगे, अरे देखो वाचालम, ये बच्चा जो है कृष्णम, वाचालम मतलब बहुत बात करता है, ये बड़बड़िया बच्चा है, बहुत बड़बड़ 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 करता है। बालिशम, ये तो छोटा बच्चा है। अज्ञम, अज्ञानी है, मूर्ख है। पंडित मानिनम, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है। और स्तब्धम, बहुत घमंडी है। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, तो ऐसे पृथ्वी लोक के निवासी के शरण लेकर उन्होंने हम सब के प्रति और विशेष रूप से मेरे प्रति बड़ा अपमान किया है, अपराध किया है। क्योंकि देवलोक के निवासी जो होते हैं वो पृथ्वी लोक के निवासियों से ऊपर माने जाते हैं, परंतु उनके पद और ऐश्वर्य का घमंड कभी कभी प्रकट हो सकता है, जैसे कि इंद्रदेव के साथ में हुआ। और इस प्रकार से इंद्रदेव ने फिर ऐसे बादलों को बुलाया जो कि केवल सृष्टि के संहार के समय प्रयोग किए जाते हैं, इनको सामवर्तक बादल कहते हैं। तो सामवर्तक बादल भी कांपते हुए आ गए कि अरे अभी तो सृष्टि के संहार का समय हुआ नहीं, तो अभी क्यों कृष्ण इंद्रदेव ने हमें बुलाया है। परंतु इंद्रदेव ने उनको आदेश दिया कि जाओ और वृंदावन में ये जो घमंडी ब्रजवासी हैं, जो गायों का देखभाल करते हैं, उनके गांव के ऊपर ऐसी मूसलधार वर्षा बरसाओ कि उनको सबक सिखा दो, उनको दंड मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरे प्रति इतना बड़ा अपराध किया है। तो सामवर्तक बादल आ गए वृंदावन के ऊपर और एकदम से तूफान आने लगा, वहां पर बड़े तेज गति से हवा बहने लगी और ओले पड़ने लगे, ओले मतलब बर्फ के टुकड़े पड़ने लगे और बरसात होने लगी। किस तरह से बरसात हुई? खंभों के, बूंदों में नहीं, बारिश के खंभे गिरने लगे, ऐसा भयंकर बरसात हुआ वहां पर। और इतनी ठंडी हवा बह रही थी और बरसात भी इतना हो रहा था, सब जगह में बाढ़ हो गया था और सारे ब्रजवासी इधर उधर भागते कृष्ण के शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम अर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सल। भगवान कृष्ण के पास गए, कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे महान भाग्यवान कृष्ण, त्वन्नाथम, आप अपने ही स्वामी हैं, आपका कोई स्वामी नहीं है, आप हमारे स्वामी हैं और स्वयं आप अपने ही स्वामी हैं और आप गोकुल के स्वामी भी हैं, आप अपने स्वामी हैं और हम गोकुल के निवासी हैं, आप हमारे स्वामी भी हैं। त्रातुम अर्हसि, हमारी रक्षा कीजिए, किनसे? देवान नह, हमारी रक्षा देवराज इंद्र से कीजिए। कुपितात, क्योंकि वो बहुत ही क्रोधित हो गए हैं और आप भक्तवत्सल हैं। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि अरे ये मेरे भक्त जो हैं बड़े कठिनाई में हैं, ये इंद्रदेव ने घमंड के कारण मेरे प्रिय भक्तों को इतना कष्ट देना शुरू कर दिया है। वास्तव में ब्रजवासियों को बहुत कष्ट हो रहा था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हमें ब्रजवासियों के कष्ट को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई साधारण व्यक्तियों के दुख के समान है। यहाँ पे भौतिक जगत में सभी को कष्ट होता है, सभी को दुख झेलना पड़ता है। हम जो बुरे कर्म करते हैं तो उसके फल हमको मिलते ही हैं, परंतु ब्रजवासियों का जो ये कष्ट था ये कर्मों का फल नहीं था, ये भगवान की लीला शक्ति थी। भगवान चाहते थे कि उनके हृदय में जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो और तीव्र हो जाए। तो जब हम कष्ट में पड़ जाते हैं तो तीव्रता से याचना करते हैं भगवान की कृपा की। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि ब्रजवासियों का प्रेम और भी बढ़े। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत भूखा रहता है और भूख के कारण उसके पेट में दर्द होने लगता है और उसके बाद उसे जब कोई अच्छा भोजन मिलता है, बहुत स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं खाने के लिए, अमरस और पूरी और श्रीखंड और बहुत सी चीज़ें मिलते हैं, तो फिर वो वही भोजन और भी स्वादिष्ट लगने लगता है। क्यों? क्योंकि पहले भूख की पीड़ा थी, भरे पेट पे वही भोजन खाने में उतना आनंद नहीं आता, लेकिन जब हमें बहुत भूख लगती है तो उसी भोजन को बड़े उत्साह से हम खा सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब भगवान अपने भक्तों को कष्ट में डालते हैं तो इसके पीछे कारण ये है कि भगवान चाहते हैं कि भक्त और तीव्रता से उनके शरण में चले जाएं और ऐसे निस्सहाय भाव से भगवान को पुकारना सुख के समय में संभव नहीं होता है। सुख के समय में हम भगवान को भूल भी जाते हैं कभी कभी, इसलिए जानबूझकर भगवान कष्ट भेजते हैं। और यहां पे ब्रजवासियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण सारी दुनिया को सिखाना चाहते हैं कि हमें कष्ट के समय कैसे भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भगवान से दूर चले जाएं कष्टों के कारण, श्रद्धा खो बैठना नहीं चाहिए हमें, हमें और तीव्रता से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण सोचने लगे कि मैंने तो व्रत लिया है कि मैं मेरे भक्तों की रक्षा करूंगा, कौन्तेय प्रतिजानी ही ममे नमे भक्तः प्रणश्यति, और मेरे बेचारे भक्त यहाँ बहुत कठिनाई में हैं, और मेरे भक्त वहाँ स्वर्ग लोक के जो इंद्र हैं उनके मान का भी भंग मुझे करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े आसानी से गोवर्धन पर्वत उठा लिया। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया विष्णु छत्रकाम इव बालकः। वो कहते हैं शुकदेव गोस्वामी, इति उक्त्वा, ऐसे बोलकर, एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धन आचलम दधार, दधार मतलब उन्होंने धारण किया, एकेन हस्तेन एक हाथ से, कृत्वा कर दिया, क्या धारण किया, गोवर्धन आचलम, अचल, अचल मतलब पर्वत, पर्वत के कई शब्द होते हैं, अद्री अचल इत्यादि। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया, लीलया, लीला में, खेल खेल में उठा दिया। भगवान श्री कृष्ण को कोई कठिनाई नहीं हुई गोवर्धन पर्वत धारण करने में। छत्रकाम इव बालका, बालक है, एक बालक कैसे एक गगन धूली उठाता है ना, जिसको अंग्रेजी में मशरूम कहते हैं, या फूल को उखाड़ता है बच्चा जमीन से और आसानी से उसको तोड़ के उठा देता है, बच्चे को भी कठिनाई नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया जमीन से और एकेन हस्ते ने एक हाथ से उसको उठाकर धारण कर लिया। और फिर श्री कृष्ण ने घोषणा की सारे ब्रजवासियों को, आइए मेरे प्रिय ब्रजवासी भक्त गोवर्धन पर्वत के नीचे आइए। वैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्री कृष्ण के कर कमलों के स्पर्श के कारण गोवर्धन इतने हर्षित हुए थे कि एक अचिंत्य घटना हुई, उनका शरीर और भी बढ़ गया, गोवर्धन और भी विशाल हो गया, और इतना विशाल हो गया कि सारे लाखों की संख्या में जितने भी ब्रजवासी थे, जितने भी गाय और अन्य पशु थे, वो सब गोवर्धन के नीचे आ पाए। और इतना ही नहीं, गोवर्धन के ऊपर जो मृग और अन्य जो पशु थे उनको कोई कठिनाई नहीं हुई, उनको जो उनके गोवर्धन के ऊपर जो वज्रपात हो रहा था आसमान से, गोवर्धन को ऐसे प्रतीत हुआ कि मानो कोई फूलों के हार अर्पण कर रहा है। और भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता रहा गोवर्धन से, घूमता रहा, घूम घूम के जो भी बारिश आ रही थी उसको सुखाते गया, इसलिए ब्रजवासियों को कोई कष्ट नहीं हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको अंदर आने के लिए निडर भी बनाया और कहा कि मेरे प्रिय ब्रजवासी भक्तों, ऐसे डरना नहीं कि हम पर्वत के नीचे आएंगे और पर्वत गिर गया तो क्या होगा, ऐसे मत सोचिए, ऐसे नहीं होगा। आइए, इसे कहते हैं श्रद्धा। जब हम कोई कठिन परिस्थिति में होते हैं और हमें बताया जाता है कि आप ये छोड़ दीजिए और भगवान के शरण में आइए, तब हम डावाडोल हो जाते हैं कि अभी कैसे करें, क्या करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ब्रजवासियों की श्रद्धा अटूट थी, तो वो आ गए और गोवर्धन के नीचे आए कि कृष्ण भगवान ने जब हमें आश्वासन दिया है कि गोवर्धन पर्वत धारण करके रखेंगे तो गोवर्धन हमारे ऊपर गिरेगा नहीं। श्रद्धा भक्तों को होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक बार एक व्यक्ति पहाड़ चढ़ रहा था। आपको पता है ऐसे कई लोग होते हैं जो पहाड़ चढ़ने में आनंद लेते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में भी चलते हैं। तो उसने अपने कमर में रस्सी बांधी हुई थी और वो पहाड़ चढ़ रहा था और रस्सी भी बांध के लगा था, अचानक वो फिसल गया। जब फिसल गया तो फिर वो गिर पड़ा और रस्सी से टंग रहा था और अंधेरा हो गया था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि जमीन और कितने नीचे है, केवल टंग रहा था। तो उसने फिर भगवान को पुकारा कि भगवान आप हैं क्या? तो आसमान से आवाज आई, हाँ वत्स, मैं हूं। तो उसने कहा, भगवान मुझे बचाइए। हाँ मैं बचाने के लिए ही आया हूं तुम्हें, तो लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें हाथ ये रस्सी छोड़ देनी चाहिए, रस्सी काट लो, रस्सी छोड़ दो और मैं तुम्हें बचा दूंगा। तो अभी क्या करें? अभी उसको पता नहीं कि और नीचे जमीन कितनी दूर है। तो उसके मन में संशय आया कि यदि मैंने रस्सी छोड़ दी तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, और यदि भगवान ने पकड़ा नहीं तो क्या होगा? तो मैं तो नीचे चले जाऊंगा, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं तो। तो फिर अगले दिन सुबह जब सारे लोग ढूंढने गए उसे, तो उन्होंने क्या देखा कि वो टंग रहा था, उसकी कमर पे रस्सी अभी तक बंधी हुई थी और जहां वो टंगा हुआ था वो जमीन के केवल 6 इंच ऊपर था। आप समझ गए? यदि उसने वो रस्सी निकाल दी होती तो क्या होता? आसानी से जमीन पे 6 इंच इतना गिर जाता, बस, कोई नुकसान नहीं होता उसे। परंतु उसे श्रद्धा नहीं थी। भगवान ने स्वयं कहा कि छोड़ दो रस्सी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, परंतु श्रद्धा नहीं हुई, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम सारे अन्य धर्मों को त्यागो, केवल मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो नहीं। तो जो ब्रजवासी जैसे श्रेष्ठ महान भक्त होते हैं उनके हृदय में श्रद्धा होती है। तो जब भगवान ने कहा कि आ जाइए पहाड़ के नीचे, कुछ होगा नहीं, तुरंत चले आए। इसको कहते हैं शरणागति, श्रद्धा। बार बार जो संशय करता है वो कहीं का नहीं रहता है। संशयात्मा विनश्यति भगवद गीता में भगवान कहते हैं। तो खैर, सारे ब्रजवासी आ गए और वहां पर उनको कोई कठिनाई नहीं हुई। लगातार 7 दिन और 7 रात वहां पर रहे ब्रजवासी और श्री कृष्ण का दर्शन करते रहे। और आश्चर्य की बात यह थी कि जहां भी ब्रजवासी खड़े हों उनको श्री कृष्ण का सुंदर मुखारविंद दिखाई पड़ रहा था, और उनको बिल्कुल थकावट नहीं हुई और बाहर की ठंडी का अनुभव नहीं हुआ। वात्सल्य भाव के कारण जो वरिष्ठ गोप थे उनकी उनके मन में चिंता हुई कि अरे ये छोटा सा बच्चा इतना बड़ा पहाड़ अकेले धारण करके रह रहा है, तो हमें भी कुछ मदद करनी चाहिए। तो अपने लाठी वगैरह लेकर ऊपर पहाड़ को सहारा देने के लिए खड़े हो गए। उनको क्या पता कि कृष्ण की शक्ति क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा सा हिला दिया पर्वत और सारे लाठी वाठी यहाँ सब इतर पितर हो गए सब। फिर ब्रजवासियों को पता चला कि वास्तव में ये श्री कृष्ण अकेले पर्याप्त हैं। जो उनके मित्र थे, जो सख्य रस में थे, वो जाकर श्री कृष्ण के भुजाओं की मालिश करते थे कि अरे श्री कृष्ण इतने पहाड़ पकड़ धारण करते करते अभी कुछ दर्द कर रहा होगा, हम थोड़ा मालिश करते हैं ताकि दर्द कम हो जाए, या तो फिर ऐसे कर लो थोड़ी देर के लिए ये श्रीदामा को दे दो पहाड़, तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर श्रीदामा पकड़ लेगा, फिर तुम थोड़ी देर के बाद वापस ले लेना। और जो गोपियां थी, तरुणी गोपियां, वो तो बस श्री कृष्ण के मुखारविंद को देखती रहीं। इस प्रकार से ये एक 7 दिवसीय निरंतर नेत्रोत्सव हो गया वृंदावन के निवासियों के लिए। नेत्रोत्सव अर्थात नेत्रों का उत्सव, नेत्रों के द्वारा, आंखों के द्वारा श्री कृष्ण का सुंदर रूप वो देख रहे थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई बहुत सुंदर। जब चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन आए थे, उन्होंने भी गोवर्धन की परिक्रमा की और अनेक श्लोकों का पठन उन्होंने किया। उनमें से एक श्लोक ये है, वामस तामरसाक्षस्य भुजदंडस पातु वह क्रीड़ा कंदुकताम येन नीतो गोवर्धन गिरिः। वो कहने लगे, वामह, वाम मतलब बाया, तामरस अक्षस्य, तामरस मतलब कमल, अक्ष मतलब आंखें, अक्षस्य मतलब जिनके कमल नयन है उनके, अर्थात श्री कृष्ण के, भुजदंड सपातु वह, तो जो भुजदंड अर्थात बाहें भुजाएं, तो जिन्होंने जिनके कमल नयन हैं और जिन्होंने अपने बाएं हाथ से क्या किया है, नीतो गोवर्धन गिरी ही, नीतो मतलब धारण किया है गोवर्धन गिरी को, गिरी गोवर्धन को, कैसे, क्रीड़ा कंदुकताम ये न, जैसे बच्चा खिलौना को खोल खिलौने को उठाता है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ से सारे गोवर्धन पर्वत को उठाया है। ऐसे कह के श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन को प्रणाम किया और गोवर्धन परिक्रमा भी कर ली उन्होंने। तो खैर ये सब तो हो गया और उधर सारे ब्रजवासी 7 दिन तो लगातार रहे वहां पर। वहां पर 7 दिन में उनके उन्होंने कोई विश्लेषण नहीं किया, अरे छोटा सा बच्चा कैसे इतना बड़ा पहाड़ धारण कर सकता है, क्या ये संभव है, ये सारे विचार उनके मन में नहीं आए। उन 7 दिनों में केवल भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन करने का आनंद लेते रहे बस। लेकिन जब 7 दिन बीत गए और इंद्रदेव के होश ठिकाने आ गए, उनका मान भंग हो गया, तब इंद्रदेव को थोड़ा पछतावा हो गया कि अरे मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। और इंद्रदेव के हृदय में डर उत्पन्न हो गया कि अरे ये तो स्वयं मेरे आराध्य देव भगवान कृष्ण हैं और मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा अपराध उनके प्रति और उनके प्रिय ब्रजवासी भक्तों के प्रति किया। तो तुरंत उन्होंने सामवर्तक बादलों को कहा कि निकल जाओ, जल्दी वापस चले आओ, वापस चले आओ। तो जब बरसात खत्म हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा कि हे प्रिय ब्रजवासियों, अभी गोवर्धन के पर्वत के नीचे से आप बाहर आइए, अब बरसात खत्म हो चुकी है, अब मैं नीचे गोवर्धन पर्वत को रखूंगा। और इस प्रकार से सारे ब्रजवासी बाहर आए। फिर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा। अब कैसे रखा, जब उठा सकते हैं तो रखने में भी क्या तकलीफ है। हाँ, तो कैसे रखा हो जब बीच में खड़े हैं गोवर्धन के, तो ऐसे उल्टा ऐसे करके रखा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े आसानी से सारे गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया और वो भी चले गए गाय चराने के लिए। जब सारे ब्रजवासी लौटकर आ गए अपने अपने घरों में, तब जाकर विचार करने लगे, विश्लेषण करने लगे कि अरे 7 दिनों में हुआ क्या था। ये छोटे से बच्चे ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, ये क्या संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। और आपस में बहुत चर्चा करके जब वो और भी भ्रमित होते गए, तो उन्होंने सोचा कि ये तो भगवान ही होंगे। क्या ये संभव है कि 1-7 साल का बच्चा गोवर्धन जैसे पर्वत को धारण कर सके? और दूसरी ओर हमने ये भी देखा है कि उसने ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं, बड़े बड़े असुरों का वध किया है, तो हो सकता है ये स्वयं भगवान नारायण हो? ये बच्चा है कौन? तो चलो हम नंद महाराज के पास जाते हैं और हमारे संशय का निवारण करते हैं। तो सारे ब्रजवासी जो हैं नंद महाराज के पास गए। अरे ये ऐसे संभव कैसे है नंद बाबा कि श्री कृष्ण जैसे अद्भुत बच्चा हम सब साधारण ग्वालों के बीच में जन्म ले? उसने पूतना का वध कर दिया, शकटासुर तृणावर्त आदि का वध कर दिया, ऐसे देखो ऊखल से बंधे हुए भी उसने 2 महान बड़े पेड़ों को गिरा दिया और दावानल को भी पी लिया, अब बड़े पहाड़ को उसने उठा लिया, तो ये है कौन? और कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम है, जो बहुत तीव्र प्रेम है, वो हमारे हृदय में इतना क्यों है? हम क्यों श्री कृष्ण के प्रति इतने आसक्त हैं और हमारे प्रति श्री कृष्ण क्यों इतने आसक्त हैं? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, हम भ्रमित हो चुके हैं। तो नंद महाराज मुस्कुराने लगे और वो कहने लगे, आपके संशय का निवारण मैं करता हूं। क्योंकि नंद बाबा तो वात्सल्य भाव में थे, तो उनके मन में तो कृष्ण के प्रति एक ही विचार था कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बच्चा है, बस, और कोई विचार नहीं था। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, जब श्री कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ था तो गर्ग मुनि यहाँ पर आए थे और उन्होंने बताया था कि आपका जो बच्चा है ये हर युग में प्रकट होता है। शुक्लो रक्तस तथा पीथ इदानीम कृष्ण ताम गतः। शुक्ल, शुक्ल अर्थात सफेद रंग का, रक्त अर्थात लाल रंग का, पीथ अर्थात पीले रंग का, और ऐसे रंगों में वो प्रकट हो चुके हैं पहले पूर्व युगों में, और अभी इदानीम कृष्ण ताम गतः, अभी कृष्ण वर्ण सांवले रंग से ये प्रकट हुआ है बच्चा आपका। और अनेन सर्व दुर्गाणी योयम अंजस्तरिष्यथ, जितने भी कष्ट आप सबके जीवन में आएंगे उनसे ये बच्चा आपकी रक्षा करेगा, और इसके जो गुण हैं वो भगवान नारायण के समान हैं, नारायण समो गुण ही, इसलिए आप चिंता नहीं करना। तो फिर नंद महाराज ने ऐसे जब बतलाया तो ब्रजवासियों को, जो बहुत मासूम थे, भोले भाले थे, वो शुद्ध हृदय था उनका, कोई भी कलमश नहीं था, कोई कपट छल आदि नहीं था उनके हृदय में, तो उन्होंने बात को मान ली और फिर वो सब सोचने लगे कि ये शायद भगवान नारायण के विस्तार भी हो सकते हैं। और इस प्रकार से नंद महाराज को प्रणाम करके वो सब वापस चले गए। उधर इंद्रदेव स्वर्गदेव में कांप रहे थे डर के मारे, मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया, मुझे क्षमा याचना करने के लिए कृष्ण के पास वृंदावन में जाना चाहिए, परंतु अकेले जाने से घबरा रहे थे, और उनको पता था कि कृष्ण गायों को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो सुरभि माता के पास गईं जो स्वर्ग लोक की गाय गोमाता हैं, और उनसे निवेदन किया कि कृपया आप मेरे सामने आइए, साथ में आइए, आपको देखकर श्री कृष्ण का क्रोध कम हो जाएगा और फिर मैं पीछे से कृष्ण के सामने आऊँगा और कृपा याचना करूँगा। तो सुरभि देवी आई इंद्रदेव के साथ में, और गोवर्धन के पास ही श्री कृष्ण गौओं को चरा रहे थे, और थोड़े अलग से आए थे श्री कृष्ण, तो सुरभि को सामने रखते हुए इंद्रदेव वहाँ पर आए। उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण उस समय अकेले थे, उनके ग्वाल बाल मित्र यहाँ वहाँ गौओं के साथ जा रहे थे, तो बड़े करुणामय दृष्टि से देखने लगे कृष्ण इंद्रदेव के ऊपर। और मेघ गंभीर या वाचा, बादल के गरजते हुए गरजने के आवाज से बोलने लगे कि हे इंद्र, तुम मेरे भक्त हो और इस प्रकार का घमंड तुम्हें शोभा नहीं देता है। मैंने ये जो लीला रची है केवल तुम्हारी बुद्धि सही ठिकाने लाने के लिए, तो आइंदा कभी इस प्रकार का घमंड नहीं करना। अब वापस जाओ, अपनी जगह जाकर अपनी सेवा ठीक से करो, और ऐसी गलती आइंदा नहीं करना। तो इंद्रदेव ने इस बात को बड़ी नम्रता से स्वीकार कर लिया, और सुरभि माता के साथ में उन्होंने श्री कृष्ण को इंद्र उनका अभिषेक किया, राज्य अभिषेक किया। वास्तव में श्री कृष्ण ने इंद्रदेव से कहा था कि देखो, असली इंद्र तो मैं हूं, इंद्र अर्थात राजा, और तुम मेरे प्रतिनिधि राजा हो, और तुमने यदि ठीक से काम नहीं किया तो फिर उत्पात हो जाएगा सारे ब्रह्मांड में। तो अब सुरभि माता और इंद्रदेव और अन्य जो ऋषि मुनि आए थे, स्वर्ग लोक के निवासी आए थे, उन्होंने मिलकर श्री कृष्ण का राज्य अभिषेक किया। सुरभि माता के दूध से और गंगा जल से, स्वर्गीय गंगा जल के द्वारा इंद्र और सुरभि ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक वहां कराया, गोविंद कुंड के पास, वही जल है वो। और फिर इंद्रदेव और सुरभि माता वापस अपने अपने जगह में चले गए। इस प्रकार से ये सुंदर गोवर्धन लीला भगवान श्री कृष्ण की भगवान ने प्रकट कराई, और आज भी इस लीला को हम बार बार सुन के भी बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता है कि बचपन से हम ये कहानी सुनते आए हैं, अभी हम ऊब गए हैं। नहीं, भगवान की लीलाएं नित्य नव नवायमान होती हैं, सदैव ताज़े होती हैं, और इन लीलाओं को सुनकर हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। और क्योंकि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गायों की भी रक्षा की थी, तो आज गो पूजा का दिन भी है, गोपाष्टमी का दिन अलग है, वो आएगा अभी 12 तारीख को, है ना, 12 तारीख को गोपाष्टमी हम नंदगाम गौशाला में मनाएंगे, वहां जाके गायों की कथा करेंगे। लेकिन आज भी गो पूजा है, गोवर्धन पूजा के साथ साथ गो पूजा है, ये भी उत्सव मनाया जाता है। श्री गिरिधारी की जय, श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय, श्री गिरि गोवर्धन की जय, श्री गोवर्धन पूजा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।